विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में, तत्त्वमसि में त्वम पद, अहम् ब्रह्मास्मि में अहम् पद, उसका लक्ष्यार्थ कूटस्थ ब्रह्म है, वाचार्थ अंतकरण विशिष्ट चेतन चिदाभास है। तो कूटस्थ ब्रह्म चिदाभास से भिन्न है, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण में घटाकार पटाकार वृत्ति होती है। उस घटाकार पटाकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होता है। उस प्रतिबिंबित चेतन को चिदाभास कहते हैं। तो चिदाभास से विशिष्ट जो वृत्ति है उसको घट ज्ञान पट ज्ञान कहा जाता है। तो ब्रह्माकार ये घटाकार पटाकार वृत्ति यदि ना हो तो चिदाभास पे नहीं होगा, दर्पण ना हो तो दर्पणस्थ प्रतिबिंब भी नहीं होगा। इसलिए घटाकार पटाकार वृत्ति होने से पहले घट का भान होता है ना? कैसा घट का? अज्ञात घट का। घटम अहम न जानामि, अज्ञात घट का प्रकाशन हो रहा है। तो यहां पर तो चिदाभास से नहीं होगा, है ना? तो चिदाभास से इसलिए नहीं होगा, घट के साथ चक्षु का संबंध नहीं है। चक्षु का संबंध न हो तो अंतकरण में घटाकार वृत्ति भी नहीं होगी, घटाकार वृत्ति न हो तो चिदाभास पे नहीं होगा। तो अज्ञात घट का भान कूटस्थ चेतन से होता है। ये आया और ज्ञात कुंभ चिदाभास हो जाने पर घट का भान होता है, अयम घट ये घड़ा है। अब घट में कौन सा धर्म आ गया? ज्ञात, ज्ञातता धर्म आ गया। अब ज्ञात घट का भान भी चिदाभास से हो जावे, ऐसे कोई कहे? कहते नहीं, नहीं हो सकता है। चिदाभास ने तो घट में ये ज्ञातता धर्म को उत्पन्न करके समाप्त हो गया, अब तो चिदाभास है नहीं, है ना? फिर भी जो है घट का भान हो रहा है, घटम अहम जानामि, इस प्रकार से। इसलिए चिदाभास से अतिरिक्त कोई चेतन है ये मानना पड़ेगा, वो चेतन है कूटस्थ, है ना? इसलिए अज्ञात घट का भान के लिए भी कूटस्थ चेतन चाहिए और ज्ञात घट का भान के लिए भी कूटस्थ चेतन चाहिए, है? ये सप्तम श्लोक में कहा गया। देखो एक बार उच्चारण कर लें, सप्तम श्लोक देखो। श्लोक श्लोक तो हो गया था लेकिन केवल आवृत्ति कर ले। अज्ञातो ब्रह्मणा भाष्यो ज्ञातः कुंभस्तथा न किम् ज्ञातत्व जननेनैव चिदाभास परीक्षयः। अज्ञातः कुंभः ब्रह्मणा भाष्यः। अज्ञात जो कुंभ है घट ब्रह्म से प्रकाशित होता है, भाष्य में प्रकाश्य, कौन प्रकाश्य हुआ? घट। कैसा घट? अज्ञात घट, है ना। अच्छा अब कहते हैं ज्ञात कुंभ तथा न किम, ज्ञात कुंभ भी ऐसा क्यों नहीं होगा, ब्रह्म से प्रकाशित क्यों नहीं होगा, अर्थात ब्रह्म से प्रकाशित हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा, आपका कहने मात्र से तो नहीं होगा। कहते हैं युक्ति, हम तुमको युक्ति बताते हैं, अर्थापत्ति बताते हैं, ये कह रहे अर्थापत्ति प्रमाण है। ये देखो कह रहे सब उत्तरार्ध में, ज्ञातत्व जनन एव चिदाभास परीक्षय। वो चिदाभास ने तो भाई ज्ञातता को उत्पन्न करके चरितार्थ हो गया, परीक्षा नष्ट हो गया वो है ना। लेकिन फिर भी घट का तो भान हो रहा है, इस घट का, हाँ ज्ञात घट का। आप ऐसा उत्तर देते हो ना तो हमको भी अच्छा लगता है ना। तो मालूम पड़ता है कि समझ में आ रहा है। तो ज्ञात घट का भान हो रहा है, चिदाभास का नष्ट होने पर भी, चिदाभास न होने पर भी ज्ञात घट का भान हो रहा है, इसलिए कुटस्थ ब्रह्म है। कुटस्थ ब्रह्म यदि न होता, चिदाभास का परिचय होने के बाद भी ज्ञात घट का भान न होता। ज्ञात घट का भान हो रहा है चिदाभास का परिचय होने पर भी, इसलिए कुटस्थ ब्रह्म है। किससे अतिरिक्त है, चिदाभास से अतिरिक्त है। ये हो गया अर्थापत्ति प्रमाण। अच्छा टीका थोड़ी सी देख लो। यथा अज्ञात कुंभो ब्रह्मणा भाष्य, जैसे अज्ञात कुंभ, अज्ञात मतलब अज्ञान का विषय, अज्ञात का अर्थ अज्ञान का विषय अथवा अज्ञान से विशिष्ट, इसको कहते हैं अज्ञात है ना। पहले ब्रह्म, ये पहले घट का ज्ञान नहीं ना हो रहा है तो अज्ञान का विषय कौन हुआ, घट हो गया। तो एक है अज्ञात कुंभ ब्रह्मणा भाष्य, कुटस्थ ब्रह्म से प्रकाशित होता है। तथा ज्ञात कुंभ न किम ब्रह्म अभाष्य भवति, ज्ञात कुंभ भी ब्रह्म के द्वारा भाषित क्यों नहीं होगा, अर्थात हो जाएगा। क्यों, देखो चिदाभास का संबंध हो गया घट के साथ, बराबर है कि नहीं, चिदाभास का संबंध घट के साथ हो गया। अब घट कैसा हुआ, केवल घट नहीं हुआ, चिदाभास से युक्त घट हो गया है कि नहीं, चिदाभास से युक्त घट ना हुआ हाँ। अब घट में तो चिदाभास भी हुआ, तो चिदाभास भी ज्ञान हुआ ना, कौन सा ज्ञान, गौण ज्ञान बताया है कि नहीं। तो उसका भान ज्ञान विशिष्ट घट, चिदाभास युक्त घट, तो चिदाभास युक्त ज्ञान विशिष्ट घट का भान हो रहा है। तो ज्ञान से ज्ञान का यदि बोलेंगे, ज्ञान से प्रकाश से ज्ञान को यदि मानेंगे हाँ, तो दोष हो जाएगा ना, स्वयं स्वयं को प्रकाशित कैसे करेगा है ना। आप अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकते हो, दूसरे के ऊपर तो चढ़ सकते हो है ना, स्वयं के कंधे पर कैसे चढ़ोगे, नहीं चढ़ सकते। इसलिए ज्ञान ज्ञान का प्रकाशक नहीं होता है, ध्यान देने के बाद है ना। ज्ञान विशिष्ट घट, तो घट में भी ज्ञान है कि नहीं है ना, तो नहीं अगले इसको बोलते हैं विषयता संबंध से ज्ञान रहेगा, विषयता संबंध से ज्ञान रहा घट में, इसलिए ज्ञान विशिष्ट घट तो उसका भान हो रहा है ना। उसका भान यदि ज्ञान से बोलोगे, मतलब ब्रह्म चिदाभास से अतिरिक्त ब्रह्म को न मान करके, तो ज्ञान ज्ञान का प्रकाशक नहीं हो सकता है ना। ऐसा मानेंगे तो दोष हो जाएगा भाई है ना। स्व कर्मत्व स्वकर्तृत्व एक ही में हो गया, दूसरे के कंधे पर चढ़ सकते हो, अपने कंधे पर कैसे चढ़ोगे। इसीलिए जो ज्ञान घट में है वो ज्ञान उस ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकता है। ध्यान समझ में आए, है ना? जो ज्ञान मतलब जो चिदाभास घट में है वह चिदाभास उस चिदाभास को प्रकाशित नहीं कर सकता है ना? ऐसा समझ में ना, इसलिए दूसरा कोई चेतन मानना पड़ेगा। धन में है कि नहीं बात को, है ना? जो ज्ञान जो चिदाभास घाट में है संबंध है ना, तो उस चिदाभास को है ना वही चिदाभास प्रकाशित नहीं कर सकता, दूसरा होना चाहिए। हाँ, चिदाभास चिदाभास को प्रकाशित नहीं कर सकता है, दूसरा कोई होना चाहिए। वो दूसरा कौन होगा? कूटस्थ ब्रह्म, है ना? जो नहीं मानते ना उनको भी मानना पड़ेगा, विचार करने पर मानना पड़ेगा, इसलिए कूटस्थ ब्रह्म अतिरिक्त है। वो भाई वो चिरावास्ता है ना, हाँ वो चिरावास्ता है, वहां पर ज्ञातता धर्म को उत्पन्न किया ना, उसको वो स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता है, दूसरा प्रकाशित करेगा। वो दूसरा कौन है? कूटस्थ। और कूटस्थ ब्रह्म तो चित रूप है वो, हाँ उसका प्रकाश दूसरा कोई नहीं होगा, वो स्वयं प्रकाश है। अनवस्था बराबर अनवस्था दोष हो जाएगा उसका, ये फिर दूसरा कोई मानेंगे अनवस्था हो जाएगा ना, हनुमान जी के पूंछ की तरह हो जाएगा। ऐसे में चले दो चेतन हो गए देखो, हाँ कूटस्थ चेतन सम प्रकाश है और चिदाभास पर प्रकाश से है वो, हो गए कि नहीं ऐसा समझ लो। हाँ तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, प्रकाशक हुआ वो, प्रकाशक समझ लो है। हाँ हाँ विषय, हाँ वो तो हाँ चिदाभास तो वो तो विषय हो गया, हाँ ये समझ ली ठीक है ना। चलो टीका है, ये बोल दिया ज्ञात कुंभो न किम ब्रह्म अभाष्य होती, ज्ञात कुंभ भी उस ब्रह्म से अभाष्य क्यों नहीं होगा, अर्थात हो जाएगा। कुतः भाई क्यों ऐसा मानना होगा, तो श्लोक में बता दिया ज्ञातत्व जनने एव चिदाभास परीक्षय, वो चिदाभास ने तो है ना घाट में एक धर्म को पैदा किया जिसका नाम ज्ञातत्ता, उसका काम तो खत्म हो गया, वो उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, कूटस्थ ज्ञान से है ना साक्षी ज्ञान से होगा। तो आगे चले अष्टम श्लोक का विचार करने जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी टीका है अवतरण के रूप से, आप लोग देखो। ननु अज्ञातता जननाय अज्ञानम इव ज्ञातता जननाय अपि बुद्धिरेव अलम किम अनेन चिदाभासेन इति आशंक्य। सबको मिल गए ना टीका, तो देखो भाई शंका पक्षी का कहना है अज्ञात जननाय अज्ञातता धर्म को पैदा करने के लिए अज्ञानम अज्ञान को आपने माना, हो गए कि नहीं, अज्ञान को आपने माना है, इसलिए अज्ञातता धर्म आया किस में? घट में, घट में है ना। हाँ वो कब से है? अनादिकाल से है, कब से घट को नहीं जानते तो कैसे कहोगे अनादि है ना, इसलिए अज्ञान भी अनादि है और अज्ञान का धर्म भी अनादि होगा, अनादि हुआ। अज्ञात को उत्पन्न करने के लिए अज्ञानम अज्ञान को आपने माना, हो गया ना भाई, तो उसके बाद जो है घटाकार वृत्ति हुई, चक्षु के माध्यम से घटाकार वृत्ति हुई है ना, तो घटाकार वृत्ति हुई तो अज्ञान नहीं रहा, रहा क्या? नष्ट हो गया ना अज्ञान है ना, तत्र ज्ञानम ध्यानस्य ये बताया, तो उस घटाकार वृत्ति ने किसको उत्पन्न किया? घट में एक धर्म को उत्पन्न किया, ज्ञातता। ये कह रहे ज्ञातता जननाय अपि बुद्धि रेवल, वो बुद्धि ही उत्पन्न करे, घटाकार वृत्ति ही घट में ज्ञातता धर्म को उत्पन्न करे। आप वृत्ति में एक चिदाभास को क्यों मानते हो? अकेले वृत्ति ही काम कर दे भाई, अकेले यदि कोई काम कर सके, साथ में किसी को रखने की क्या जरूरत है? फिर होगी कि नहीं भाई? एक से काम यदि हो सके, नौकर चाकर रखने की क्या जरूरत है फिर? सही कि नहीं? नौकर चाकर रखोगे तो बीमार पड़ोगे, जितना हो सके कर लेना चाहिए। तो एक कह दिया, शंका समझ में आई ना? हाँ, घटाकार वृत्ति से ही ज्ञातता धर्म हो सकता है, फिर घटाकार वृत्ति में एक चिदाभास मानने की क्या जरूरत है? ये कह रहे कि मने ना चिदाभास है ना, चिदाभास मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसी आशंका हुई। तब कहते हैं चिदाभास माने बिना काम नहीं चलेगा, है ना? वृत्ति में एक अभिव्यक्त चेतन होता है जिसके कारण जो है वो वृत्ति घट में ज्ञातता धर्म को पैदा करती है, ये बात कहना जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आगे चिदाभास रहिताया बुद्धेर घटादिवत अप्रकाश रूपत्वेन ज्ञातता जननम न संभवती। चिदाभास से रहित, चिदाभास यदि न हो वृत्ति में, मतलब वृत्ति में चेतन की अभिव्यक्ति न हो, मतलब चेतन का संबंध न हो, तो होगी कि नहीं? चेतन का क्या न हो? संबंध न हो, चेतन का संबंध बनेगा? तादात्म्य। और क्या, चेतन का क्या संबंध बनेगा भी? पर्दे का क्या संबंध बनेगा चित्र के साथ, है ना? लेकिन संबंध वहां पर वास्तविक नहीं होता है। और क्या, मुख का क्या संबंध दर्पण के साथ? सूर्य का क्या संबंध नीचे दर्पण के साथ, है ना? ऐसा समझ लो, तादात्म्य है, ऐसा है। तो चिदाभास यदि न हो बुद्धि में, घटाकार पटाकार वृत्ति में, तो दोनों समान हो जाएंगे फिर। घट है, घट जैसा जड़ है, पांचभौतिक है कि नहीं? और बुद्धि भी क्या है? पांचभौतिक है, दोनों तो समान है, क्या अंतर है? क्या न मानने पर? चिदाभास यदि न मानेंगे तो वृत्ति में दोनों समान हो गए, ये भी जड़ है ये भी जड़ है। तो घट किस चेतन, घट जो है किसी को प्रकाशित कर सकता है? नहीं कर सकता है ना? ठीक, इस बार घटाकार वृत्ति प्रकाशित नहीं कर सकती, घट जैसे प्रकाशित नहीं करता है, इस बार वृत्ति भी कर नहीं सकती है। करती इसलिए है क्योंकि वृत्ति में चिदाभास होता है ना, ये बात कह रहे जा रहे हैं। घटादिवत घट जैसे कैसा है? अप्रकाश रूप है। कैसा है? अप्रकाश रूप है। घट जड़ हो गई है, घट कैसा हो गया? जड़। क्यों हो गया? अप्रकाश रूप है। इसी प्रकार बुद्धि भी कैसी है? जड़ है। क्यों? अप्रकाश रूप है, ये अनुमान हो गया। बुद्धि ही जड़ा अप्रकाश रूपत्वात घटवत, है ना? लेकिन वृत्ति घटाकार पटाकार जो वृत्ति अंतकरण है, और अंतकरण क्या पदार्थ है हम जानते हैं सब, अपंचकृत पंच महाभूत के सत्य गुण से मिलितांश, सत्य गुण का मिलितांश हो गया अंतकरण। अरे कल्पना तो सब क्या है, सारा संसारी कल्पना है, कार्य को देख करके कारण की कल्पना करते हैं भी, है कि नहीं? घट में जो है चेतन की अभिव्यक्ति नहीं होती है, अंतकरण में चेतन की अभिव्यक्ति है, इसलिए घट में और अंतकरण में कुछ तो विषमता माननी चाहिए। तो विषमता क्या है? गुण को लेकर के, ये सात्विक है वो सात्विक नहीं है, ये मानना होगा। तो यही बात कह रहे हैं, चिदाभास रहित यह बुद्धि, चिदाभास यदि न हो तो चिदाभास रहित बुद्धि घट की तरह अप्रकाश हो जाएगी, अप्रकाश रूप हो जाएगी। इसलिए जो अप्रकाश रूप मतलब जड़, जड़ यदि हो जाएगी तो ज्ञातता जननम न संभवती, जनम उत्पत्ति, जनम शब्द का अर्थ उत्पत्ति, ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति घट में नहीं हो सकती, केवल बुद्धि से नहीं हो सकती है। इसलिए चिदाभास मानना होगा। इसलिए पहले आप लोग को बता दिया, भगवान भाष्यकार भी ऊपर ने कहा, टीका में कहा ना षष्ठ श्लोक में, बोधेद्धा बुद्धि ही, इसको कहते हैं ज्ञान, है ना। चेतन की अभिव्यक्ति जिस वृत्ति में होती है उसको कहते हैं ज्ञान, है ना। इसलिए चिदाभास युक्त जो बुद्धि है उसका नाम होता है ज्ञान। घट ज्ञान किसका नाम हो गया? चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति, समझ में न, चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति। पट ज्ञान किसका नाम होगा? चिदाभास युक्त पटाकार वृत्ति, ये है था ज्ञान। केवल वृत्ति को ज्ञान नहीं बोला जाता है ना। हाँ, अज्ञान निवर्तक ज्ञान, अथवा केवल चेतन को भी अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं बोला जाएगा, है ना, ऐसा है। इसलिए श्लोक को आरंभ करते हैं। आभास हीनया बुद्ध्या, आभास हीनया बुद्ध्या, ज्ञातत्वं नैव जन्यते, ज्ञातत्वं नैव जन्यते, तादृक् बुद्धेर्विशेषः को, तादृक् बुद्धेर्विशेषः को, मृदादेः स्याद्विकारिणः, मृदादेः स्याद्विकारिणः। कहते हैं ज्ञातत् तम नेव जन्यते, ज्ञातता, ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। किससे नहीं हो सकती है? बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, है ना। कैसे बुद्धि? आभास हीनया, आभास से रहित। आभास का संबंध यदि बुद्धि के साथ ना हो तो केवल बुद्धि के द्वारा, है ना, ज्ञातता धर्म नहीं आ सकता है घट में। मतलब घट का भान नहीं हो सकता, सीधा सीधा अर्थ है। घट का भान, ये घड़ा है ऐसा समझ लो, ये घड़ा है ऐसा घट का भान नहीं हो सकता है केवल वृत्ति से। यदि मानोगे नहीं, केवल घटाकार वृत्ति से ही हो जाएगा घट का प्रकाश, है ना, तो कहते हैं मिट्टी से भी हो जाएगा घट का भान, पॉट से भी घट का भान हो जाएगा। कहते होता है क्या? नहीं होता है, है ना। तो क्यों भाई? समान हो गए और क्या हो गए? चेतन छोड़ दिया जावे, अब अनुभव में कर लो ना। अरे भाई, जिसको लेकर हम अभिमान करते हैं, शरीर में अभिमान करते क्या नहीं, शरीर का क्या महत्व है? चेतन, चेतन यदि न हो तो, चेतन निकल गया है तो इसमें और घटपट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। हाँ, उल्टा डर लगता है शरीर से। शरीर चेतन निकल गया, राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते कि नहीं भाई? वहां काशी विश्वनाथ में जाओ, मणिकर्णिका का घाट है कि नहीं? कुछ गली में जाओगे मणिकर्णिका, हाँ, कितने जाते हैं? मेरे शरीर गिनती नहीं कर सकते, 24 घंटे, बराबर ना। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, कौन सत्य है? राम सत्य के, राम का नाम सत्य है, लेकिन वहां पर तो बोलते हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, कौन सत्य हुआ कि दो सत्य है? राम सत्य की राम का नाम सत्य है, लेकिन कहां ऐसा बोलते हैं राम नाम सत्य बोलते हैं? राम सत्य ऐसा बोलना चाहिए ना, फिर राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? ये तात्पर्य वहां पर, मतलब राम के नाम के द्वारा सत्य राम को प्राप्त किया जाता है। आया समझ में? हाँ, बड़ा रहस्य है उसका। भगवान राम के नाम के द्वारा हाँ, राम की प्राप्ति हो जाती है। नाम के द्वारा हाँ, नामी मतलब अनाम, भगवान का नाम नहीं हाँ, लेकिन नाम के द्वारा अनाम की प्राप्ति हो जाती है। ये वहां पर तात्पर्य है ना, बड़ा रहस्य है। तो ले लीजिए, तादृक बुद्धिर विशेष को मृदादेशद विकारिणः। विकारिणः मृदादे, मृदादि कैसे है? मिट्टी है, पट है, ये मठ है, ये सब कैसे? विकारी, विकार मतलब कार्य, विकारी का अर्थ कार्य, विकारी का अर्थ क्या है? कार्य, कार्य है ना। हाँ, किसका कार्य हो गया? मिट्टी का। हाँ, वाचारम्भणम विकारो नाम देय। तो ये है भिकारी हो गया। तो मिट्टी की भी उत्पत्ति होती है, मिट्टी की भी, घट की भी उत्पत्ति, मिट्टी की भी उत्पत्ति है, माया से जितने भी है सब सबकी उत्पत्ति होती है। भिकार मतलब कार्य ले लीजिए, भिकारी जितने भी कार्य होते हैं मिट्टी आदि, उसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। को विशेष बुद्धि है, तादृक बुद्धि, तादृक बुद्धि मतलब चिदावास से रहित जो बुद्धि है, चिदावास को छोड़ दो तो क्या केवल बुद्धि बुद्धि रहेगी? केवल बुद्धि बुद्धि रहेगी हाँ। तो चिदावास से रहित बुद्धि में और मिट्टी आदि कार्य में कोई विशेष कोई अंतर नहीं है। अंतर तो इसलिए कि चिदावास की अभिव्यक्ति होती है। आए समझ में? यद्यपि मिट्टी भी पांच भौतिक है और बुद्धि भी पांच भौतिक हो गया ना। जैसे पत्थर भी पांच भौतिक है और बालू से बनने वाला शीशा कांच कोई पांच भौतिक है, लेकिन दोनों में क्या अंतर? अंतर ये है कि पत्थर आदि सूर्य के प्रकाश को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन शीशा जो होता है सूर्य के प्रकाश को अभिव्यक्त कर देता है। इसीलिए कांच में जो है प्रतिबिंब दिखता है, पत्थर आदि में नहीं दिखता है ना। एक एक जो है अभिव्यक्ति का साधन है और दूसरा जो है अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बस इतना अंतर है। अंतर तो इतना है। इसी भी अगर यहां पर ले लो है ना कि बुद्धि आदि जो है, बुद्धि बुद्धि जो है सात्विक है और घटपट आदि मिट्टी आदि सात्विक नहीं है, ये कह रहे हैं। तादृक बुद्धि विशेष को मृदादेश विकारण, नहीं तो क्या विशेष रहेगा? कोई अंतर ही नहीं रहेगा चिदावास को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला केवल वृत्ति के द्वारा घट में ज्ञाताता धर्म नहीं आता है, मतलब घट का प्रकाश नहीं होता है, अपितु चिदावास की अभिव्यक्ति जब हो जाती है वृत्ति में तब घट का प्रकाश हो जाता है। ये कर, ये दोनों का मानना चाहिए, दोनों को मानना चाहिए। किस किस को? कूटस्थ चेतन को ये मानना चाहिए और चिदावास को ये मानना चाहिए। आगे नवम श्लोक में कहते हैं भूमिका, टीका में, चिदाभास रहत बुद्धि व्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत अभावम् दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। तो इसको और स्पष्ट करते हैं, चिदावास से रहित यदि बुद्धि हो जावे, चिदावास से रहित, चिदावास यदि न हो तो ऐसी बुद्धि तो क्या हो गई? जड़ हो गई। ऐसी बुद्धि को क्या बोलेंगे? जड़ बोलेंगे। हो गया ना। अरे भाई चिदाभास निकल गया, राम नाम सत्य हो गया, इस शरीर को क्या बोलोगे, जड़ बोलोगे कि नहीं? उससे पहले क्या बोलते हो? उससे पहले चेतन बोलते हो। जद्य भी चेतन नहीं है, लेकिन चेतन को अभिव्यक्ति हो रहे है ना। अरे भाई इसलिए तक कोई जड़ बोल दिया तो अपने आप को कोई जड़ मानता है क्या? नहीं मानता है। शरीर को भी चेतन समझ रहा है। ये विवेक नहीं होता है, भाई तुम गाली दे रहे हो इसको, दे रहे हो मुझे कहाँ दे रहे हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब शरीर को भी आप चेतन समझ रहे हो, हैं? हुआ तो काम हो गया है ना, हुआ तो काम हो गया। और नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हो रहा है तो क्या मानना चाहिए फिर? समय व्यर्थ जा रहा है, नहीं? हाँ वही कह रहा हूँ ना, प्रयास करने के लिए कह रहा हूँ भाई, है ना, प्रयास करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा अभ्यास बनता रहे। चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्तस्य घटस्य, ये देखो चिदाभास रहित यदि बुद्धि हो जावे, ऐसी बुद्धि से व्याप्त कौन हो गया? घट। व्याप्त, व्याप्ति से युक्त को कहते हैं व्याप्त, संबंध वाला को कहते हैं व्याप्त, हो गया ना भाई, ऐसा है। हाँ बुद्धि का संबंध हो गया घट के साथ, तो कहते हैं ज्ञातत्व अभावम, ज्ञातता नहीं आ सकती है घट में, ज्ञातत्व धर्म नहीं आ सकता, केवल बुद्धि से नहीं आ सकता है ना। हाँ इसको दृष्टांत दे करके बताते हैं, दृष्टांत प्रदर्शन न, दृष्टांत दिखा करके स्पष्ट करते हैं। ज्ञात इत्युच्यते कुंभो मृदा लिप्तो न कुत्रचित् धीमात्र व्याप्त कुंभस्य धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ज्ञातत्वं नेष्यते तथा। देखो बोलते हैं तथा आ गया ना, तो यथा का भी अध्ययन कर लो, यथा तथा, जैसा वैसा, तो यहाँ पर वैसा है तो जैसा भी बोलना पड़ेगा है? तो यथा का अध्ययन करके ले लो। तो बोलते हैं मृदा लिप्त कुंभ, मृदा तृतीयांत, मृत का मृदा बनता है तृतीया एक वचन में, हा मिट्टी से, मिट्टी से कुंभ लिप्त हुआ है, इसका दो अर्थ है, हैं? पहला एक अर्थ है, हाँ एक अर्थ पहले समझ लो, जैसे परिणामवादी लोग होते हैं ना, परिणाम मानते हैं ना, सांख्य लोग योग लोग क्या मानते हैं? परिणाम मानते हैं, परिणाम, परिणामवादी है ये, नहीं माया लोग तो मानेंगे नहीं, है ना, प्रकृति का, तो समझ लो चार बात होता है, कितना बात होते हैं? चार बात, चार बात, बाद मतलब कथन, बाद पहले समझ लीजिए। आरंभ कणभक्ष पक्ष, समझे ना, और संघात वादस्तु भदंत पक्ष, ये चार को समझ लो। आरंभ वाद कणभक्ष पक्ष, संघात वादस्तु भदंत पक्ष, ये दो हो गए। संघात वादस्तु भदंत पक्ष, भदंत पक्ष, पहले श्लोक लिख लो जिसको लिखना है, हैं? आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, कणभक्ष पक्ष, ये शब्द ही बड़ा जटिल है, है संघात बादस्तु भदंत पक्ष, संघात बादस्तु भदंत पक्ष, भदंत पक्ष। और आगे लिखो है ना, सांख्यादि पक्ष परिणाम वाद, सांख्यादि पक्ष परिणाम वाद, हाँ परिणाम वाद। और विवर्तस्तु वेदांत पक्ष, विवर्तस्तु वेदांत पक्ष, चार हो गए चार है। इले तो कह दिया कि आरंभवाद कणभक्त, कणभक्त जानते हो, कणाद है, कणाद मुनि को कणभक्त, कण जो चुन चुन करके खाते थे उसका हम नहीं बताएंगे, समय चला जाएगा। तो नैयायिक और वैशेषिक, कणाद हो गए वैशेषिक और नैयायिक है जो है मर्त्यजैमिनी, दोनों का समान है। वो लोग मानते हैं आरंभ, ये घड़ा मिट्टी से आरंभ हुआ, पहले घड़ा नहीं था अब घड़ा बन गया, पहले घड़ा नहीं था ऐसा बोलते हैं वो लोग है ना। तो ये हो गया आरंभवाद। और जो बौद्ध लोग है ना, भदंत पक्ष बौद्ध, हाँ वो लोग के संघात बौद्ध है ना। तो वो लोग संघात मतलब पुंज, अरे परमाणु का पुंज है, परमाणु का पुंज। और क्या, धान के ढेरी जैसे होती है, धान की ढेरी जैसी होती है ना, इसी प्रकार ये छोटे छोटे कण का ये पुंज हो गया है, घटपट कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। और ये जो परिणाम बाद कौन हो गया, सांख्य, योग को ले लो आदि से योग है ना, सांख्य सिद्धांत योग सिद्धांत, ये लोग क्या मानते हैं, परिणाम मानते हैं, परिणाम मानते हैं। और तीनों से हट करके वेदांति बोलता है, विवर्त तू लगा दिया ना, वेदांत किसी को नहीं मानता, वो तो विवर्त मानता है, ये ब्रह्म का विवर्त है। जैसे रस्सी का विवर्त सर्प हो गया, शुक्ति का विवर्त हो गया चांदी, इसी का ब्रह्म का विवर्त हो गया ये सारा जगत है ना। तो ये परिणाम बात को लेकर पहले समझ लो यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये परिणाम बाद सांख्य लोग योग सूत्र लोग बोलते हैं कि तेल जो है ना, तेल वो तिल में पहले रहता है। अरे तिल के छिलके के अंदर तेल रहता है कि नहीं, यदि नहीं मानेगा तो फिर रेती से बनाओ तेल। दूध में यदि घी ना रहे, भले ही ना दिखे, यदि ना रहे तो फिर गंगा जल से बनाओ, कोई तांत्रिक बना दे महापुरुष कर दे वो बात अलग है ना। लेकिन सामान्य रूप से तो कोई बना नहीं सकता ना। तो तिल में तेल पहले से रहता है, हो गया कि नहीं। इसी प्रकार जैसे मूर्ति पत्थर में पहले से रहती है, हो गया कि नहीं, पहले से रहती है, भले ही मूर्तिकार को दिखे लेकिन सबको तो नहीं दिख सकती ना मूर्ति। इसी प्रकार मिट्टी में घड़ा रहता है, मिट्टी से आवृत है घड़ा, जिस मिट्टी से घड़ा बनने वाला है ना, उस मिट्टी से कौन आवृत है, घड़ा आवृत हो गया कि नहीं, दिखता है क्या, नहीं दिखता है, हाँ नहीं दिखेगा ना, ये बात कह रहे हैं। देखो एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ फिर बताएंगे। मृदा लिप्त कुंभ, मिट्टी से लिप्त हो गया, मिट्टी में घड़ा है कि नहीं, दिखता नहीं है, लिप्त हो गया। इसलिए बोलते हैं मृदा लिप्त कुत्रचित न ज्ञात उच्यते, ज्ञात इति उच्यते न, ऐसा लगाना। मृदा लिप्त कुंभ कुत्रचित कहीं भी हो, ज्ञात इति न उच्यते, घड़ा है हो गया कि नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। मतलब जब तक घटाकार वृत्ति न बने, चक्षु का संबंध न हो, जब तक घटाकार वृत्ति न बने, और घटाकार वृत्ति में जब तक चिदाभास न हो, तब तक घड़ा का भान नहीं हो सकता है, हो गया ना। ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ मृदा लिप्त का ले लो, घड़ा है और उसे मिट्टी को लेप दिया, लेपन कर दिया भाई, ऐसे लिप दिया, तो घड़ा दिखेगा क्या, नहीं दिख सकता है। तो चक्षु का संबंध हुआ नहीं, चक्षु का संबंध नहीं हुआ इसलिए घटाकार वृत्ति भी नहीं होगी, और घटाकार वृत्ति नहीं हुई तो चिदाभास भी नहीं हुआ इसलिए घट का भान नहीं हो सकता है। इसलिए दो अर्थ है मृदा लिप्त हो गया ना। ठीक इसी प्रकार तथा जैसे मिट्टी से लिप्त घड़ा का भान नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार तथा धी मात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वम न इष्यते। ये जो कह दिया धी मात्र व्याप्त, धी मतलब कौन, वृत्ति, केवल वृत्ति का संबंध हुआ है, किसका संबंध नहीं हुआ, चिदावास का संबंध नहीं हुआ, अरे कि नहीं चिदावास का संबंध नहीं हुआ तो जो घट ज्ञात है, घट जाना गया ये घड़ा है ऐसा भान नहीं हो सकता है ना। इसलिए दोनों मानना चाहिए। थोड़ी सी टीका पूरी कर लें। लोके लोके कुत्रचित मतलब व्यवहार में, व्यवहार में कहीं भी घट मृदा शुक्ल कृष्ण रूपया, ये मिट्टी कैसी होती है, काली हो गई, सफेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, ये मृदा का विशेषण कह दिया, उसे लिप्त हो गया घड़ा, उससे घड़ा हो गया लिप्त मतलब लेपनम प्राप्त, उसको लिप दिया गया है ना, और तब पहले परिणाम की तरह ऐसा हो जावे तो ज्ञात इति न उच्चते यथा, यथा का अध्ययन किया, जैसे घड़ा का भान नहीं होता है, घड़ा का भान नहीं होता है तथा इसी प्रकार से चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्तस्य अपि, चिदाभास से रहित, चिदाभास यदि न हो ऐसे चिदाभास से रहित जो बुद्धि है, बुद्धि ना वृत्ति है ना, उससे व्याप्त होने पर भी, उसका संबंध होने पर भी, किसके साथ, घट के साथ होने पर भी कुंभस्य ज्ञातत्व न अभिपगम्यते है ना, कुंभ में ज्ञातत्व धर्म को नहीं माना जाता, मतलब हो ही नहीं सकता है, अनुभव में आ रहा है ना। इति भाव, ऐसा श्लोक का तात्पर्य है। इसलिए दोनों को मानना चाहिए, ये कूटस्थ ब्रह्म को ही मानना चाहिए और चिदाभास को ही मानना चाहिए। इसलिए तम पदार्थ कौन हो गया, कूटस्थ, कूटस्थ ब्रह्म तम पदार्थ का लक्षार्थ है और तम पदार्थ का वाच्यार्थ चिदाभास। इसलिए विवेक करके किसको समझना है, लक्षार्थ कूटस्थ ब्रह्म को समझना है, इसको कहते हैं तम पदार्थ का शोधन, ये चल रहा है तम पदार्थ का शोधन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।